Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Sunta Vasal Mima Tavish Nimi Veno Aap Saru Bandhu तैतरीय उपनिषद के माध्यम से उपासना विषय को प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत यहां पर पहले संहिता आज की उपासना की चर्चा की, फिर पुनः जो है यहां मेधा की कामना और श्री की कामना की चर्चा की गई, और मेधा श्री कामना की चर्चा करते हुए पुनः जो है उस ओम की उपासना को लेकर के आगे चर्चा कर रहे हैं। तो मेधा की कामना करते हुए संकेत किया कि समस्त वेदों में जिसकी प्रधानता है और समस्त वेदों का जो अमृत स्वरूप है, वैसे तो वेद ही अमृत हैं, और उन वेदों के अंतर्गत जो अमृतत्व रूप से प्राप्त करने योग्य है, उसको लेकर के ओंकार की तरफ संकेत किया कि वह ही उस अमृतत्व को प्राप्त कराने का निमित्त है, हेतु है, ऐसा उसे बतलाते हुए यहां पर क्रम से संकेत किया कि जिस प्रकार से पत्तों के अंतर्गत को मिव करके संकेत किया, जो कहा कि जैसे पत्तों में नशे होती हैं और समस्त पत्ते के अंतर्गत उस नसों की व्याप्तता होती है, ठीक उसी प्रकार से ओंकार समस्त वेदों में व्याप्त है। तो समस्त वेदों में व्याप्त होने के कारण ही उसे विश्व रूप शब्द से कहा गया। तो माने वो ओंकार कैसा है, तो कहने लगे वही विश्व रूप है, ऐसी चर्चा की, और ऐसे उस ओंकार की उपासना के लिए ही संकेत किया कि वही इसलिए जो है समस्त वेदों में श्रेष्ठ है, समस्त वेदों में उसकी ही प्रधानता है और वही अमृत स्वरूप है, ऐसा कहते हुए फिर उसी को संकेत किया कि वही क्या है, इंद्र है, अर्थात वही परमात्मा है, समस्त मेधा शक्ति को देने वाला भी वही है, ऐसा उसके लिए प्रयोग करते हुए फिर उसी से प्रार्थना करते हैं कि वह ऐसा जो वह अमृत स्वरूप है, वह जो देव है, उस देव को मैं धारण करूं, ऐसा संकेत क्रम से करते हुए फिर उसी से प्रार्थना की कि वह देव अर्थात ओंकार स्वरूप जो देव है, या ब्रह्म का कोषभूत जो देव है, वह देव क्या करे, तो हमारे शरीर को जो है शक्ति से संपन्न करे, बल से संपन्न करे, उसमें वह विचक्षणता प्रदान करे कि जिसके द्वारा वह भी तत्संबंधी ही कार्य करने में प्रवृत्त हो, ऐसा क्रम से वर्णन करते हुए फिर एक एक अवयव को लेके कह दिया, हमारी जो जिह्वा है वो अत्यंत मधुरतम हो जावे, और जो जिह्वा के अंतर्गत मधुरता आ जाएगी वो, उसके बाद फिर संकेत किया कर्णों के लिए, कहा हमारे कर्ण भी जो हैं वो बहुत सुनने वाले हो जाएं, अर्थात जो है वह उस अनंत को श्रवण करें, और अनंत को श्रवण करते हुए अनंत रूपता में ही हमें ले जाएं, ऐसा जो है संकेत करते हुए पुनः जो है उसी ब्रह्म के लिए संकेत किया कि तुम ब्रह्म के कोष हो, और कोष जो है अत्यंत समीपी होता है, तो ऐसे ब्रह्म के कोषभूत आप जो है हमें जो है उस ब्रह्म की प्राप्ति कराएं, अर्थात आप ही जो है उस ब्रह्म की उपलब्धि स्थान है, ऐसा संकेत करते हुए फिर अंत में संकेत किया, मैं जो भी श्रवण करूं हमारे उस सुने हुए की आप रक्षा करें, अर्थात जो श्रवण किया हुआ है उस श्रवण किए हुए के तात्पर्य को ग्रहण करता हुआ मैं उसमें स्थित हूं, ये उसकी रक्षा है। जब तक हमने श्रवण तो किया और उसके तात्पर्य को ग्रहण नहीं कर पाए तो वो श्रवण भी श्रवण नहीं हुआ, इसलिए युक्तिपूर्वक श्रवण करने का नाम ही वास्तव में श्रवण है। तो यहां संकेत किया कि तात्पर्य को ग्रहण करते हुए उस तात्पर्य में ही मेरी स्थिति हो, या उसमें ही मेरा ठहराव हो, या वो मेरे से दूर न हो, इस प्रकार से यहां संकेत क्रम से करते हुए और मेधा की कामना करते हुए पुनः जो है फिर कहा कि मेरे लिए वह देव जो है वो क्या करे, तो लक्ष्मी को लाने वाला हो, श्री को लाने वाला हो और श्री को लाकर के मेरे में उस श्री का विस्तार करे, ऐसा संकेत करते हुए और आगे संकेत करते हैं कि श्री की आवश्यकता क्या। तो संकेत किया, जब तक हमारे पास श्री नहीं है तो श्री से हम एक लौकिक धन संपदा को भी समझ लें, वो भी उसका अर्थ है, और श्री शब्द के कई अर्थ हैं, शब्द अनेकार्था, कांति भी अर्थ है, शोभा भी अर्थ है, प्रमा भी अर्थ है, ये अनेक उसके अर्थ होते हैं। तो यहां पर जो है संकेत पहले जो है श्री शब्द का करते हैं कि वह श्री मेरे लिए जब आएगी तो श्री का हेतु क्या है, धन किस लिए चाहिए, तो कहने लगे कर्म के लिए। कर्म किस लिए चाहिए, तो संकेत कर दिया कर्म जो है तो श्री की कामना जो है धन के लिए, और धन की स्थिति, धन की कामना किस लिए, कर्म के लिए। और जब व्यक्ति कर्म करता है तो वह शुभ से शुभ कर्म करे, लेकिन कर्म की स्थिति क्या है, जहां कर्म हमारे लिए अतिशय पैदा करता है, जहां कर्म हमारे लिए पुण्य निश्वात्मक जो है फल को पैदा करता है, वहीं पर कर्म के द्वारा कुछ अशुभ भी हो जाता, हम न चाहें तो भी उसके द्वारा अशुभ की प्राप्ति होती। हम जैसे श्रेष्ठ कर्म सुरखामो ज्योतिष टोमो, ये तो हमारे अंदर अन्य कोई कामना नहीं है, स्वार्गिक कामना है, स्वर्ग की कामना है, और उसके लिए हम श्रेष्ठ ज्योतिष टोम नाम का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ करने में क्या करोगे, आहुति दोगे, अग्नि को प्रज्वलित करोगे, ये सब क्रिया होगी, मंत्रोच्चारण होगा, लेकिन जहां पर अग्नि प्रज्वलित होगी तो यह भी स्वाभाविक है, उससे उसमें आहुतियों के द्वारा और जो है सिख अदृष्ट की प्राप्ति होगी, लेकिन वहीं पर इतने जीवाणु इस वायुमंडल में प्रवेश किए हुए हैं, वह उस अग्नि की प्रज्वलता में उनका क्या होगा, उनका अवसान भी होगा, उनकी मृत्यु भी होगी। तो अब इस प्रकार से हम जहां भी शुभ कर्म करते हैं तो वहां कुछ न कुछ अशुभ भी हो जाता, इसलिए संकेत किया कि हम जो है धन और धन के द्वारा जो है कर्म, और कर्म के द्वारा फिर पुनः कर्म की संकेत की, अगर कर्म की क्या आवश्यकता, तो कहने लगे जिस कर्म को लेकर के हम जो है संसार के अंतर्गत अपने जीवन को धारण करते हैं, तो जीवन धारण करने में भी कर्म की आवश्यकता होती, और जब कर्म की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता ही नहीं, भगवान ने तो यहां तक कह दिया नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म, एक क्षण भी तुम जो है जब तक जीवन है कर्म किए हुए रह सकते नहीं। अब जो है जब कर्म करोगे तो उस कर्म के द्वारा यद किंचित अशुभ भी होना स्वाभाविक है, उस अशुभ की निवृत्ति के लिए फिर पुनः प्रार्थना की कि हे भगवान, हम जो है वह कर्म करते हुए उस कर्म से होने वाला जो अशुभ है या उससे होने वाला जो पाप है, उस पाप की निवृत्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, या आप में ही हम कर्म करते हैं, आपको लक्ष्य बनाकर के कर्म करते हैं, और उस कर्म के द्वारा जब आपको लक्ष्य बनाकर के हमने कर्म किया तो मैं चाहता हूं कि आपका प्रवेश मेरे में हो, और जब आपका प्रवेश होगा तो उस प्रवेश के द्वारा क्या होगा, वो जो हमारे द्वारा हुआ पाप, वो जो हमारे द्वारा हुआ जो क्या नाम अशुभ, उस अशुभ की निवृत्ति हो जाए। तो उस अशुभ की निवृत्ति के लिए फिर संकेत किया, जब अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी तो शुभ मात्र शेष रहेगा, और जहां शुभ मात्र शेष रहेगा वहां उज्ज्वलता सात्विकता होगी, माने निर्मलता होगी, स्वच्छता होगी, और जहां स्वच्छता होगी तो कहने लगे ज्ञान वहीं पर उदित होता, स्वच्छता में निर्मलता में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ज्ञान है वही वेद के अंतर्गत अमृत है, और उस अमृत के द्वारा ही क्या है हमें अमृतत्व धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा लक्ष्य तो उस अमृतत्व को प्राप्त करना है और उसके लिए चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए ये सारा का सारा परंपरा संबंध से ये सारा का सारा कार्य चाहिए। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है समस्त श्री को प्राप्त कराते हुए, मेधा को प्राप्त कराते हुए, और आपका प्रवेश मुझ में हो और मैं आप में प्रवेश करूं, अर्थात इससे वो अपनी एकता को सिद्ध करने की प्रार्थना करता है। और साथ में उसने कहा कि ब्रह्मचारी जो लोग हैं वह ब्रह्मचारियों को तुम मेरे लिए लाओ, या ब्रह्मचारी मेरे पास आए। तो अब ब्रह्मचारी उसके पास आए, ये क्यों कहा? तो देखो, शास्त्र के अंतर्गत प्रसंग के अनुसार शब्दों की चर्चा की जाती है। तो ब्रह्मचारी शब्द जो यहां पर कह रहा है कि मेरे पास लाओ, तो ब्रह्मचारी को तो ग्रस्त में प्रवेश करेगा, फिर वानप्रस्थ में जाएगा, तब कहीं सन्यास होगा। लेकिन जो सन्यास के द्वारा प्राप्त होने योग्य जो वस्तु है, फल है, उसे तुम चाहते हो, और उसे चाहते हो तो सन्यासियों को बुलाओ, ब्रह्मचारियों को क्यों बुला रहे? तो कहने लगी, अभी हमारी जो भूमिका है, हमारी जो अधिकारिता है, हमारी जो पात्रता है, उस पात्रता को तद अनुकूल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? कहा ब्रह्मचारियों का। ब्रह्मचारी कैसे बनाएंगे? तब ब्रह्मचारी शब्द का इस प्रसंग के अनुसार अर्थ किया गया। इसलिए भगवत्पादाचार्य आचार्य शंकर ने ब्रह्मचारी शब्द का क्या अर्थ है, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, इसको बतलाते हुए संकेत किया, ब्रह्माध्ययनम संयुक्तो। किसे ब्रह्मचारी कहते हैं? तो उन्होंने कहा ब्रह्माध्ययन संयुक्तो, ब्रह्मचर्यम रता सदा। जो क्या कर रहा है? कहा ब्रह्म का अध्ययन कर रहा है, ब्रह्म के अध्ययन में जो लगा हुआ है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वहां किया वेद, जो वेद के ही अध्ययन में लगा हुआ, अर्थात वेद का अध्ययन किया। तो वेद में जो शब्द राशि है उस शब्द राशि को ग्रहण करता हुआ, उस शब्द राशि के अंतर्गत जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करता हुआ, अर्थ को ग्रहण करता हुआ, और उस वेद का जो अर्थ और शब्द के मध्य में जो तात्पर्य है उस तात्पर्य को ग्रहण करने का जो प्रयास कर रहा है वही है वेदाध्ययन, ब्रह्माध्ययन। और उसमें ही जो संयुक्त है, माने संयम सम्यक रूप से युक्त है, माने लगा हुआ है, तो सम्यक रूप से जो उसी में लगा हुआ, तो उसको कहते ब्रह्मा अध्ययन संयुक्तो, ब्रह्म के अध्ययन में जो संयुक्त है। और ब्रह्मचर्यम रता सदा, अब जो है वह ब्रह्म में रहने वाला जो धर्म, अब ब्रह्म में तो कोई धर्म नहीं रहता, लेकिन क्या है, यहां वेद है, तो वेद में रहने वाला धर्म क्या है? तो वेद में रहने वाला धर्म ही क्या है, है? जो अमृत स्वरूप अनंत सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है वही क्या है, उस वेद का धर्म। इसको नाना प्रकार से शास्त्रों में संकेत किया गया कि वेद का मुख्य तात्पर्य क्या है। तो आप गीता में भी पढ़ते हो वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, वहां भी उसी तरह संकेत किया गया। तो ऐसे उस वेद के धर्म में ही जो क्या है, तो कहने रत है, माने उसी में जो रमण करने वाला है। तो ब्रह्मचर्यम रता सदा, उस ब्रह्मचर्य के धर्म में, अर्थात वेद का जो धर्म है, अर्थात उसमें ही जो है सर्वथा जो है क्या हुआ है, कहा लगा हुआ है, रत है, रमण करने वाला है, अन्यत्र उसकी कहीं पर रमणता नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्यम रता सदा। फिर कहने लगे इतना ही नहीं, उसके साथ में फिर क्या है, कहने लगे उसी से तद एकत्वम, उसके साथ में एकता, माने ब्रह्मेति सर्वम इति, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसे एकत्व के स्थापन में जो लगा हुआ है उसी का नाम ब्रह्मचारी स उच्यते, उसका नाम क्या है, कहा ब्रह्मचारी। तो ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए यह प्रार्थना करता, अब जब ऐसे व्यक्ति होंगे तो ये नियम है कि जैसा व्यक्ति हमारे समीप में होगा तो उस समीप वाले के कार्यकलाप को देख करके उसके संस्कार हमारे अंदर भी, तो ऐसे व्यक्तियों की वह समीपता नहीं चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहता है कि जिनके द्वारा उसके अंतर्गत अशुभ संस्कार पड़े, शुभ संस्कार ही पड़े। इसलिए यहां ब्रह्मचारी शब्द को लेकर के कहा कि ब्रह्मचारियों को मेरे पास लाओ। ये सारी चर्चा क्रम से करते हुए अब आगे पुनः और भी संकेत करते हैं। ये सब कहा, आगे कहने लगे, यशो जने अशानी स्वाहा। अब संकेत किया कि जो जन समूह है, जने यशः अशानी माने जन समूह के अंतर्गत, लोक के अंतर्गत, इस लोक में जो जन समूह है उस जन समूह में क्या करें, तो संकेत किया कि मैं यशस्वी हो जाऊं, यश वाला हो जाऊं, अर्थात मुझे यश वाला बना दो। मने संसार में जो भी जन समूह है उस जन समूह में मेरे को निंदा का पात्र कोई न समझे, मुझे जो है यश का पात्र ही समझे, मेरी सब प्रशंसा करें। ऐसे तो ऐसा क्यों कह रहे, ये कब होगा? ये तभी होगा जब हम यशस्वी कर्म करें। यदि हम यशस्वी कर्म नहीं करेंगे तो हमारी निंदा होगी। और यशस्वी कर्म क्या है, तो संसार के अंतर्गत अन्य कर्म जो हैं वो एक सीमा में हमें यश दिलाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही उसमें ही रत हो जाता है, तो उसके लिए या वेद के तात्पर्य को ही समझने में रत हो जाता है तो उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से वो संकेत करते हैं कि मैं यशस्वी अर्थात इसको प्राप्त हूं या मुझे यश प्राप्त कराओ, ऐसा जो है संकेत करते हुए। और फिर संकेत किया यश प्राप्त करने के साथ साथ श्रेयान वश्यशो असानी स्वाहा, ऐसा संकेत। मनि श्रेयान मनि जो श्रेष्ठ है या जो प्रशस्तर है, प्रशंसा के योग्य है, और प्रशस्त शब्द का अर्थ और होता जिसके अंतर्गत मने दृढ़ता है, दृढ़ भाव है, उसे भी क्या कहेंगे, प्रशस्त। और उसी प्रशस्त से जो भाव है उसका अर्थ है तो प्रशस्त से बना। तो अब यहां पर संकेत करते हैं कि वही जो श्रेष्ठ है, प्रशस्ततर है, ऐसे प्रशस्ततर, ऐसे दृढ़ भाव को और लाते हुए वश्यस्य असानी, वश्यस्य शब्द जो है वसु शब्द से बना। और वसु शब्द जो है धन का भी पर्याय है, वसु शब्द से धन भी ग्रहण किया जाता है और वसु शब्द से देव विशेषों को भी ग्रहण किया। अष्टवाह वशवः, कितने वसु हैं, तो आठ वसुओं की चर्चा की गई। तो पृथ्वी आदि को भी वसु माना गया है ना, ऐसे ही जो है भूतों को लेकर वे चंद्रमा को भी वसु कहा गया और आदित्य को भी वसु कहा गया और मन को भी वसु। इस प्रकार से आठ वसुओं की चर्चा की। तो यहां पर संकेत करते हैं कि वह जो वसुओं वाला मैं हूं अर्थात मुझे जो है वसुओं के दृढ़ भाव वाला बना दो, तो इसके दोनों ही अर्थ। संसार के वसुओं से भी अर्थात संसार का जो धन है, संसार के जो द्रव्य हैं, उनसे भी मैं संपन्न हूं। और साथ में ये संकेत किया कि उन वसुओं से भी मैं युक्त हो जाऊं, देव विशेष जो वसु हैं उनसे भी मैं युक्त हो जाऊं, अर्थात उनका वाला भी मैं बन जाऊं। क्यों, जब तक उन वसुओं की हमारे में प्रशस्तता नहीं होगी, उन वसुओं की हमारे में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हम लोक के अर्थ को भी ग्रहण करने में बलवान नहीं हो सकते हैं। और साधना युक्त जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य को लक्षित करने में भी जो बल चाहिए वो बल भी हमारे में दृढ़ भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां संकेत किया कि जो है मैंने उन वसुओं को वश्यशः बहुवचन कर दिया, उन वसुओं वाला मैं हूं या उस धन वाला मैं हूं, ऐसा यहां पर संकेत प्रार्थना करते हुए ऋषि कहता है। और फिर उसके बाद संकेत किया, कहा इतना ही नहीं, इतना सब कराते हुए फिर हमारे में एक पात्रता, एक अधिकारता आएगी। और जब पात्रता अधिकारता आएगी उसके पश्चात क्या करना है, तब कहने लगे तम त्वा भग प्रविशानी स्वाहा। तो हे भगवन, भग शब्द से संबोधन किया कि हे भगवन, कौन से भगवन? तब कहा तम, कहा कम, तो कहने लगे कि ब्रह्म का जो कोष रूप है, ऐसा जो ब्रह्म माने भगवान, अर्थात ओम के लिए संकेत किया, माने वह ओम रूप ईश्वर या वह ओम रूप इंद्र, ऐसे उस ओम रूप के लिए संकेत किया, वह ओम रूप जो भगवान तुम हो, वह त्वा माने तुम, आप क्या करो? कहने लगे प्रविशानी, आप ही मेरे में प्रवेश कर जाओ। ये संकेत किया, और ये संकेत करने के लिए संकेत आगे करते हैं कि और मैं जो हूं वो भी क्या है, आप में प्रवेश कर जाओ, आप जो है मेरे में प्रवेश कर जाओ और मैं आप में प्रवेश कर जाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एकता, अभिन्नता, अभेदता। तो अभेदता की याचना यहां पर जाकर के वह ऋषि करता है इस प्रकार से, और फिर कहने लगे तस्मिन सहस्र साखे निवगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। ये संकेत किया, कहने लगे उस तुझ में, तस्मिन ऐसा जो तू, उस तुझ में कौन सा तू है? तो फिर संकेत किया सहस्र साखे मने अनेक शाखाओं वाला, हजारों शाखाओं वाला या अनंत भेद वाला, तू ही क्या है? संसार में जो भी वेदात्मक वस्तु दिखलाई दे रही है वो तेरे से भिन्न नहीं, अर्थात इसलिए ओम को कह दिया जाता ओम इति सर्वम, है ना, ये जो कुछ भी है वो क्या है? कहा ओम ही है, इसलिए उसी में अनेकों ये भेद प्रदर्शित हो रहे हैं, इन भेदों का दर्शन हो रहा, तो इसलिए संकेत किया कि सहस्र शाखा वाले जो तुम, अनेकों भेदों वाले जो तुम, उस तुम में ही, उस आप में ही मैं क्या करूं? तो संकेत किया निभगा अहम मृजे, मैं जो हूं अपने असवों को, अपने पापों को, अपने दुर्तों को या अपने अज्ञान को क्या करूं? कहा मृजे मने उसका शोधन करूं, उसे शुद्ध करूं। ये संकेत करते हुए आगे संकेत कहा कैसे शोधन करूं, उस शोधन की प्रक्रिया क्या? तो शोधन की प्रक्रिया आप जानते हो कि जैसे स्वर्ण का शोधन किया जाता है, और इतना ही नहीं आगे संकेत करते हैं कि जैसे जल का शोधन किस प्रकार से, यहां तो दूसरी बात हो गई, जल का क्या रूप होता है तो उधार दिया, जैसे जल का स्वभाव होता है निम्नता की तरफ प्रवाहित होना, जैसे जल निम्नता की तरफ प्रवाहित होते हुए अपने आश्रय स्थल में पहुंच जाता है, अपने आश्रय को प्राप्त कर लेता है, तो वैसे ही संकेत किया यथा आपः पर्वतः यन्ति, जैसे जल जो है अपने निम्नता की तरफ जाता हुआ अपने आश्रय को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी जो क्रियात्मक रूप से गमन हो या चलना हो या क्रियाशीलता हो, वो समस्त क्रिया का लक्ष्य या उस समस्त क्रिया का मुख क्या होना चाहिए? तो जैसे जल का मुख जो है निम्नता की तरफ बहना है, उसी प्रकार से हमारा मुख भी आपकी तरफ जाने का, आपकी तरफ गति प्राप्त करने का भी होना चाहिए। ये संकेत किया और एक शब्द कहा मासा अहरजरम, और जैसे महीने जो है कहां पहुंचते हैं? अहरजरम, अहरजरम शब्द का अर्थ है संवत्सर में, तो जैसे महीने जो है क्रम से कहां लीन हो जाते हैं, कहां पहुंचते हैं? कहा संवत्सर में। अब ये कैसे होता? तो अह शब्द का प्रयोग, जैसे रात और दिन का क्या होता, एक गति होती है, और गति होते हुए इनमें परिवर्तन देखा जाता, और उस परिवर्तन को लेते लेते क्रम से क्या होता है, वो सब कहां पहुंचते? कहा उसी संवत्सर में है। और कहने लगे इसी प्रकार से महीने, महीने भी कहां पहुंचते? कहा संवत्सर में। तो क्यों अह शब्द का प्रयोग किया? अह माने दिन, और फिर दिन में परिवर्तन होते हुए, तो दिन का परिवर्तन होना माने यही उसकी क्या है, जीड़ता। तो दिन जो है परिवर्तित होता है, जीड़ होता है, अवसान को प्राप्त होता है, और जो इस प्रकार से होते हुए मास मास के बाद जो है संवत्सर आदि अब्द आदि करके, तो ये जैसे वहां पर सारे संवत्सर को प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से संसार में जो हमारा ये साधन है वो साधन कैसा है, वो पंचभूतों का संघात, इंद्रिय आदि का संघात है। तो इसमें भी गति हो, और जब गति होगी तो इसमें भी परिवर्तन होगा, और गति को प्राप्त होता हुआ, परिवर्तन को प्राप्त होता हुआ, यह हमारा साधन रूप जो है वह साधन रूप भी कहां पर स्थित हो जाए, का संवत्सर में। अब एक महीना कहोगे, दो महीना कहोगे, एक दिन कहोगे, दो दिन कहोगे, लेकिन संवत्सर को क्या कहोगे, एक संवत्सर, ठीक है। ऐसे ही क्रम से चले जाएंगे, तो वो एक समझाने के लिए कह दिया। ऐसे ही यहां संकेत करता है कि हम भी उस एकत्व को प्राप्त हो जाए। तो ये शब्द जो है चर्चा की, और आप देखते हो एक उदाहरण आता है, ये सब सारा का सारा संसार क्या है, उसका केंद्र क्या है, तो बड़ी सुंदर चर्चा वहां की कि जैसे आप देखते हो मेरे लगते उनमें चक्र लगाते, उसमें बच्चे बैठ के घूमते हैं,